اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 230، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے اس کو، کون؟ شوہر. یہاں آپ اپنے پارے کے نیچے یا اپنے نوٹس میں ایرو لگا کے لکھیے تیسری طلاق، کیونکہ پیچھے طلاق الطلاق مرتان کی بات ہو چکی، دو دفعہ طلاق دینے کی. اب کہا جا رہا ہے کہ اب اگر پھر اس کو طلاق دے دے، کون سی؟ تیسری بھی اگر دے دے، فلا تحل لہ، تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی جب تیسری طلاق دے دی، اس کے بعد بیوی مرد کے لیے حلال نہیں. کب تک؟ مم بادو، یہاں تک کہ، حتی تنکح زوجن غیرہ، وہ عورت نکاح کر لے دوسرے مرد سے. یہ وہی چیز ہے جو ہم نے اپنے لیکچر میں دیکھ لی، جس کو آج کے دور میں حلالہ کہتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز آپ ساری سمجھ چکے. کیا پتہ چلا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو تین طلاقیں دینے کے بعد جدا کرتا ہے، تو پھر اس شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا، انلیس فطری طور پر، قدرتی طور پر حالات ایسے بن جائیں کہ کسی دوسری جگہ اس کی شادی ہو اور اس شادی کے بعد وہ گھر نہ بسے، یا وہ مرد فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے. لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ کہ دوسرے شوہر سے جسمانی تعلق ہو. صرف نکاح سے بات نہیں بنتی جب تک کہ رخصتی کا عمل بھی پورا نہ ہو. پھر اس صورت میں وہ عورت دوسرے مرد سے جب فارغ ہوگی، پھر چاہیں تو پہلا مرد اس کو دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اور یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے. اس موقع پہ اگر لوگ خود بخود یہ حلالہ کرنے کروانے کی بات کر دیں، تو یہ درست نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں ایک چیز سمجھ لیجئے حلالہ کے بارے میں. ہم ایک چھوٹا سا تقابل کریں گے. آپ ایسا کریں کہ اپنے نوٹس میں ایک کالم بنا لیں، ایک طرف لکھ لیں حلالہ اور دوسری طرف لکھیں عام نکاح. یعنی عام شادی جو ہوتی ہے، اس میں عموماً کیا ہوتا ہے؟ اعلان کیا جاتا ہے نا، حکم ہے. ہم نے پیچھے نکاح کے پریزنٹیشن میں تفصیل سے دیکھ لیا کہ اعلان کیے بغیر نکاح پورا نہیں ہوتا. تو حلالہ میں تو اعلان بھی نہیں ہوتا، کرنے والے چھپ چھپا ہی رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ تو کچھ رشتہ داروں سے بھی چھپایا جا رہا ہوتا ہے کہ کہیں ہماری اس میں بے عزتی نہ ہو جائے. پھر دوسری طرف آپ دیکھیے، دوسرا پوائنٹ دیکھیے کہ عام نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، مسنون ہے، لیکن حلالہ کے نتیجے میں جو ایک زنا ہی کی قسم بن جاتی ہے، جو صرف اس لیے حلالہ کیا جائے کہ اس عورت کو پہلے مرد سے جائز قرار دے دیا جائے، اس میں تو کوئی ولیمہ بھی نہیں کرتا. تیسری بات ہے، عام نکاح میں تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. کیا حلالہ کرنے کروانے والوں کو کوئی تحفے تحائف دیتا ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ چوتھا فرق ہے کہ عام نکاح گھر بسانے کے لیے ہوتا ہے. سورۃ نساء میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ نکاح کا ایک بنیادی رکن کیا ہے، کہ گھر بسانے کا ارادہ ہو. اسی لیے وقتی میرج، متعینکا، کہ مثال ہم ناروے میں 3 مہینے کے لیے آئے ہیں تو ایک شادی کر لیتے ہیں اور جب جائیں گے تو طلاق ہوگی، اس کو نکاح متع کہتے ہیں. بڑا معروف مسئلہ ہے علماء کی اصطلاح میں، اسلام میں جائز نہیں ہے. یعنی وہ شادی جو گھر بنانے کے لیے ہوتی ہے، وہ شادی ہوتی ہے. جبکہ حلالہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ گھر تو ٹوٹے گا. آج ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں جا رہی ہے اور اس کو پتہ چل رہا ہے کہ کل یا کچھ دن کے اندر اندر مجھے یہاں سے طلاق ہوگی. آپ سب بھی عورتیں ہیں یا بچی ہیں، جس ایج کی بھی، ذرا اپنے اوپر لے کے تو سوچیے. آپ کی شادی ویسے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ فطری طور پہ ایسا ہو جائے تو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے. کبھی آپ سنیں کہ کسی لڑکی لڑکے کی آج شادی ہوئی اور شادی کے اگلے دن ان کی طلاق ہو گئی، یا اگلے دن لڑکا مر گیا، کیسا لگتا ہے؟ اور یہ چوٹ کس کے دل پہ پڑتی ہے؟ بیچاری عورت. مردوں کا کیا، ان کے لیے تو ایک انجوائمنٹ ہے. تو نکاح اور حلالہ میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے. پھر اگلا فرق دیکھیے کہ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ نسل بڑھانے کے لیے. اور مسلمانوں کی شادیوں کا یہی مقصد دیا اللہ نے، جبکہ حلالہ میں شادی کی جاتی ہے، بچے اس میں بچے پیدا نہیں کیے جائیں گے، شرائط ہوتی ہیں. جب مقصد کا ہی فرق ہے تو وہ چیز ایک جیسی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آپ دیکھیے ایک اور فرق، عام نکاح جو مسنون نکاح ہے، اس میں عورت کی اجازت لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، حلالہ میں عورت کی اجازت نہیں لی جاتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عام نکاح میں حکم کیا ہے کہ کف دیکھو. کف کیا ہوتا ہے؟ سملیرٹی، لڑکی لڑکے کا سٹیٹس، سٹینڈرڈ، ان کی سوچ، ان کی مینٹیلیٹی، اس کو دیکھ لو کہ کہیں بہت زیادہ ڈفرینس نہ ہو. یعنی اگر ان میرڈ ہے تو ان میرڈ ہی لڑکی ہو، اگر ایک مطلب جو بھی اس کا ڈفرینس ہے. جبکہ حلالہ میں تو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا، وہ بس اس لیے کہ ایک دفعہ جان چھوٹے اور پہلے شوہر کے لیے حلال کیا جائے. پھر آپ دیکھیے عام نکاح میں اگلا فرق حلالہ سے کیا ہے، کہ اس میں مہر ہوتا ہے. حالانکہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حلالہ کرنے کرانے والے کوئی مہر رکھے، نہ طے کیا جاتا ہے نہ ادا کیا جاتا ہے. फिर आप देखिए कि आम निकाह के बाद रुख्सती होती है, हलाला में बाज़ दफ़ा उस तरह की जो एक पूरा एक फंक्शन के तौर पे या हमारे जो कल्चर में वेडिंग सेरेमनी है वो नहीं होती। फिर हमारे कल्चर की कुछ चीज़ें, आम शादी में जहेज़ दिया जाता है, हलाला में वो नहीं होता। हमारे यहाँ शादी और होनी भी चाहिए, खुशी का मौका है, हलाला करने कराने वालों के पास कोई खुशी नहीं है। शादी पे दूल्हा दुल्हन को मुबारक देनी चाहिए, इसमें हलाला में कोई किसी को मुबारक नहीं देता। आम शादी में दुल्हन तैयार होती है, सजती है, संवरती है, इसमें वो नहीं होता। शादी में ख़ानदान फैमिली वाले जमा होते हैं, हलाला में नहीं होते। आम शादी में नान नफका मर्द के ज़िम्मे होता है, इसमें नहीं। अब आप बताइए कि जिस शादी के शुरू में इतनी ख़राबियाँ हों तो फिर उसके बाद उस घर का बनेगा क्या? क्यों ज़रूरत पड़ी हलाला की? अल्लाह का सिर्फ एक हुक्म टूटा कि एक ही मौके पे तलाक है, तलाक है, तलाक है। तीन तलवारों की धार चलाई कि उस औरत को ज़िबह करके रख दिया। कल तक जो मिसेस थी, पूरे घर की, मकान की, बंगले की, बैंक की चाबियों की मालिक थी, उसको एकदम निकाल के बाहर खड़ा कर दिया कि अब तुम मेरी नहीं रही, इसलिए चली जाओ। और चूंकि मैं बहुत दीनदार शख्स हूँ, इसलिए गैर महरम औरत को घर में नहीं रख सकता और रात में बाहर हो। रियली एक रियल वाक्या किसी का मेरे सामने आया था कि सर्दियों की रात थी और शौहर बीवी खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते किसी बात पे शौहर को गुस्सा आया और उन और शौहर दीनदार थे, यानी शहर के कोई मारूफ शख्स थे दीन के नाम से। और उसके बाद उन्होंने उसी मौके पे बीवी को गुस्से में कहा कि तुझे तलाक है, तलाक है, पूरी तलाक़ें दी। और फिर उसके बाद कहा कि अब तुम घर से निकल जाओ क्योंकि मैं दीनदार हूँ और मुझे पता है कि एक जगह एक मर्द और औरत गैर मर्द औरत नहीं रह सकते। उस औरत को घर के बाहर निकाल दिया। सारी रात घर के बाहर बरामदे में उसने कहते हैं ठिठर ठिठर के गुजारी और अगले दिन फिर सुबह किसी को कर करा के रब्ता तो वो गई। आप इसको क्या कहेंगे? क्या कभी तलाक किसी ने प्यार से भी दी है? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ लेकिन तुम्हें तलाक है, गुस्से से ही होती है ना। तो लिहाजा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब अगर एक औरत का मामला इस तरह का बन गया दूसरी तरफ, तो फिर उसको इस मामले से पहले क्या करना चाहिए कि फितरी तौर पे अगर ऐसा हो जाए, और ऐसे बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन पहले से ऐसा नहीं किया जाएगा, तो फिर इस सूरत में वो दूसरी जगह शादी के बाद अगर पहले से करे, लेकिन शर्त फिर उसमें यही है कि फिर इस्लाह का इरादा हो। अगला हिस्सा देखिए आयत का। फ़ैन तल्लक़हा, और अगर तलाक दे उसको, कौन? शौहर बीवी को। फला जुनाह अलैहिमा, तो नहीं गुनाह इन दोनों पर। किस पर? शौहर और बीवी पर। किस पे? अब यहाँ आप थोड़ा सा ज़मायर लिखेंगे तब आपको इस आयत की समझ आएगी। मफहूम तो आप पूरा समझ चुके हैं माशाल्लाह, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको इस आयत में से भी समझ आए। वापस पलटिए ज़रा आयत के शुरू पे। फ़ैन तल्लक़हा, यहाँ लिखिए तल्लाक दे उसको, कौन? पहला शौहर बीवी को, क्योंकि यह दो मर्दों की अब कहानी आएगी ना। फ़ैन तल्लक़हा में तल्लक़हा के नीचे लिखिए पहला शौहर बीवी को तल्लाक दे, और तल्लाक कौन सी है वो आपको लिखा दिया, तीसरी। फ़ला तहिल्लू लहू, तो उस मर्द के लिए हलाल नहीं। किसके लिए? लहू के नीचे हु की ज़मीर लिखिए, पहला शौहर, यानी उस मर्द के लिए अब जायज़ नहीं रही वो बीवी। कब तक? मिम बादू, यहाँ तक के हत्ता वो निकाह करे, कौन? तन के हा औरत, तन के हा के नीचे लिखिए वो औरत दूसरा निकाह करे। किससे करे? ज़ौजन गैरहू, उसके सिवा किसी शौहर से। यहाँ से अब दूसरा शौहर सामने आ रहा है, सेकेंड मैरिज उस औरत की हुई जिसकी बात हमने हलाला के नाम पे देखी। अब क्या होगा? फ़ैन तल्लक़हा, बस अब अगर तलाक दे उस औरत को वो मर्द, कौन सा मर्द? शाबाश, सेकेंड। अब तल्लक़हा के नीचे डाउन एरो लिखिए दूसरा शौहर औरत को तलाक दे, लेकिन ये प्लान तलाक ना हो, देखने से ऐसे ही लग रहा है कि उसके कहने पे दे दी, यानी नॉर्मल हालात में। फला जुनाह अलैहिमा, तो नहीं गुनाह इन दोनों पर। हिमा अलैहिमा, दोन कौन है? दोन कौन? दोनों। शाबाश, पहला शौहर और बीवी, क्या गुनाह नहीं? आई यतराजा, के वो दोनों रुजू कर लें। यहाँ यतराजा के नीचे डाउन एरो लिखिए दोबारा शादी करें। यहाँ देखने में लफ्ज़ रुजू लग रहा है, लेकिन मुराद क्या है? कि दोबारा शादी कर लें। लेकिन इस दोबारा शादी करने की रीज़न क्या होगी? इन जन्न आई यकीमा हुदूद अल्लाह, कि उनको ये यकीन हो कि वो अल्लाह की हदों को कायम रखेंगे। यानी आप दूसरी शादी के बाद और जुल्म ना लड़े औरत पे टूटे, बल्कि अब उनको समझ आ गई है कि नहीं, हमने दूर रह के देख लिया कि गलती मेरी भी थी और कुछ ख़राबी मेरे में भी हो सकती है, और कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा। तो फरमाए व तिल्क हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, ये अल्लाह की हदें हैं जो अपनी कौम के लिए बयान करती हैं, करता है जो अल्लाह की हदों को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। आप बताएं कि आप इस आयत को बगैर उस्ताद की मदद के पढ़ सकते हैं? कितने ज़मायर किधर जा रहे हैं और कितनी दफ़ा सूरह बकरा आपने और मैंने पढ़ी होगी? आप किसी जगह मिल के 20 दफ़ा 30 दफ़ा सूरह बकरा भी पढ़ ले, इस आयत का क्या हक देंगे आप? तो जवाब मिल गया कि कुरान समझने की चीज़ है, फिर समझ के उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की चीज़ है। अगर सिर्फ पढ़ पढ़ के कुरान खानी के लिए ये कुरान आता, ये तो बड़ा आसान था, 23 साल की ज़रूरत नहीं थी, बस एकदम फरिश्ता आता, सारा कुरान देता और कहता सारे सहाबा पढ़ने शुरू हो जाओ। जिस काम पे आज हमारी उम्मत लगी हुई है ना आंखें बंद करके, ये काम वो भी करते। 23 साल में जो कुरान उतरा और जितनी मुखालफत आई वो इसलिए आई कि ये कुरान वो अहकाम ला रहा था जो आम कर दिए जाएंगे तो वो कल्चर चल ही नहीं सकते जो शिर्क और कुफर पे और ज़ाती फ़ायदों पे है। अल्लाह ताला ने यहाँ खोल के बयान कर दिया कि इस तरह के काम बताता हूँ ताकि समझो, यहाँ से इल्म की अहमियत बताई। लिकौमी या लमून, जानने वाली कौम, इल्म वाली कौम को ये पता चलता है कि अल्लाह की हदों को पामाल करने का जो अमल है वो दुरुस्त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है हलाला के बारे में, आपने फरमाया कि हलाला करने वाला और करवाने वाले दोनों पर लानत है। ये रिवायत है तिर्मिज़ी की, निसाई की, किताबुत तलाक की। अल्लाह के नबी कभी किसी पे लानत का लफ्ज़ आम तौर पे नहीं बोलते थे, सिवाय कोई बहुत ही ज़्यादा कभी किस्म के गलत काम करने वालों पे। और यहाँ बिल्कुल ऐसे लगता है कि हलाला करने कराने वाले पे अल्लाह के नबी का इस तरह गुस्सा है। एक और रिवायत में आपने फरमाया कि हलाला करने करवाने वाला किराए का सांड है, यानी बोरो किया हुआ एक बुल है। कितनी गंदी मिसाल आ रही है ना उस शख्स के लिए जो सिर्फ इसलिए एक औरत से शादी करे कि एक आधा दिन उससे फ़ायदा उठा के बाद में उसको छोड़ देगा। फिर इसके बाद अगली आयत पे आ जाइए, इसमें भी साथ साथ चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह अब आपको आसान लगेगा क्योंकि आप इसका पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं। और जो लोग पिछला कल का लेक्चर मिस कर चुके हैं वो बस साथ साथ रहें, इंशाल्लाह समझ आएगी। और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको बग़ैर छुट्टी के कुरान पाक को पूरा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आयत नंबर 231, व इज़ा तल्लक़तुमुन निसा, बस जब तुम तलाक दो औरतों को। किनको कहा जा रहा है? मुसलमान मर्दों को। लिखिए इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमान मर्दों को हुक्म दे रहे हैं क्योंकि इस्लाम के अहकाम सारे इस्लाम कबूल करने के बाद होते हैं। जमा का सीगा क्यों है? क्योंकि यह हुक्म सबके लिए आम है कि जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो फिर क्या होगा? फबलगना अजलहुन्ना, फिर वो औरतें पूरी कर लें अपनी इद्दत को, यानी इनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए। कितनी होती है इद्दत आम हालात में? सब बोले शाबाश, 3 क़ुरू या 3 हैज या 3 तोहर, ठीक है, 3 महीने भी हम कह देते हैं उसको। और जब उनकी इद्दत पूरी हो, आप लिखें इसके नीचे फबलगना अजलहुन्ना। अजल क्या है? नंबर 1 3 महीने और नंबर 2 डिलीवरी, अगर औरत प्रेग्नेंट है तो। अब इसके बाद क्या करो? 2 चॉइसेस हैं मर्दों तुम्हारे पास। नंबर 1, फमसिकू हुन्न बी मारूफ, तो भले तरीके से इनको रोक लो। इससे क्या मुराद होगा? सब बोले 2 तलाक़ें दे चुके, आप रुजू कर लो, रोक लो। शाबाश, कि आप तुम्हारे पास इजाज़त है, अल्लाह ने तुम्हें 3 महीने सोचने का मौका दिया, औरत तुम्हारे घर में रही, उसने तुम्हारे लिए पूरी आराइश की, सजाया संवारा, अब तुम्हारे पास चॉइस है कि फमसिकू हुन्ना बी मारूफ, अच्छे तरीके से उनको रोक लो। मारूफ की कैद क्यों लगाई? कि अब शायद रुजू करने के बाद उनको फिर दोबारा उन बुरे हालात का शिकार ना करो जो कि पहले थे। नहीं कर सकते ऐसा तो छोड़ दो फिर, अवसर रहो हुन बी मारूफ, या फिर रुख्सत कर दो उनको भले तरीके से। भले तरीके से रुख्सत करने से क्या मुराद है? कि अब उनको जाने दो, तीसरी तलाक दे दो या 3 महीने पूरे होने का इंतज़ार करो। और अच्छे तरीके से छोड़ना क्या है? कि अब उसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाते फिरो, घर घर जाके उसकी बातें ना करो कि इतनी ख़राब थी, चली गई तुम्हारी ज़िंदगी से, निकल गई, छोड़ो। हमारे जाहिलाना कल्चर में ये चीज़ इतनी आम है कि उतनी बातें मियाँ बीवी की अपनी मैरिड लाइफ में एक दूसरे के साथ या दूसरों के साथ बाहर नहीं आती जितनी किसी कपल में तलाक होने के बाद निकलती हैं। घर घर एक ही कहानी, मौजू सुखन, सब अपनी नमाजें ज़ाया कर रहे हैं, खाने चला रहे हैं, फ़ोन के बिल बढ़ा रहे हैं, सिर्फ इस सोच के अंदर कि बस जी वो फलां की घर टूट गया, तो भी तुम्हें क्या लगे, टूट गया। ये हमारे यहाँ जो इतना बड़ा शोशा बन जाता है ना किसी की तलाक होना, लोग उंगलियां मुंह में दबा के और इशारों से बातें करते हैं, और बस अच्छी वाली लड़कियाँ अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती हैं, किसी गलत से पाला पड़ गया, वो कहती हैं अब क्या करें, मरें जिए, इधर ही रहना है क्योंकि फिर लोग बातें बड़ी करेंगे। اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہاں سرہوہنہ میں صرف مرد کو نہیں کہا جا رہا، پورے سسرال کو کہا جا رہا ہے، بلکہ پوری سوسائٹی کو کہا جا رہا ہے کہ اب خبردار ان کے بارے میں باتیں کی تو ٹوٹ گئے تمہیں کیا لگے، تمہارا اس سے کیا لین دین تھا؟ بعض لوگ ساری زندگی سسک سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں لیکن کوئی سیریس فیصلہ نہیں لے پاتے یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، باتوں کا ڈر۔ کہا نہیں، احسان سے کرو، چھوڑ دو۔ ہاں ولا تم سکوہن درارن، اور نہ تم ان کو روکو ضرر دینے کو، تکلیف دینے کے لیے نہ روکو کہ اب کوئی تھوڑی کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر لیں، کچھ سزا جو نہیں دے سکے تھے اب اور دے لیتے ہیں، نہیں، زیادتی کرو گے تو یاد رکھو کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا در حقیقت وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ جو ایسے معاملات میں کسی انسان پہ ظلم کرے گا، بظاہر کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت بڑی دبی بھی دکھتی ہے، عورت بڑی دکھی ہوتی ہے، تو کہا غم نہ کرو، تمہارے اوپر اللہ کی ذات ہے جس کو تم پر پورے کا پورا اختیار ہے۔ اور ولا تتخذوا آیات اللہ خزوا، اور دیکھو اللہ کی آیتوں کا کھیل نہ بناؤ۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ حلالہ کرنے اور کروانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کے دین کا ہی سہارا لیا۔ دیکھیے جو مروجہ طریقہ ہے حلالہ کا، سراسر اس کے اور ویسٹرن بوائے فرینڈ شپ اور گرل فرینڈ شپ یا لیونگ ٹوگیدر یا ڈیٹنگ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں ابھی وی آر ناٹ سیریس، وی آر لوکنگ فار وائف، چلو چیک کرتے ہیں اچھی لڑکی اتنی ہے، لگتی ہے لڑکی تو لے لیتے ہیں، وی آر جسٹ ٹرائنگ، اٹس ریہرسل۔ اس میں اور حلالہ میں کوئی فرق نہیں، وہ بے دینی کے نام پہ کرتے ہیں، آج لوگ دین کے نام پہ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ ایسا حکم دے سکتا ہے جس نے پوری صورت نور نازل کر دی زنا کے احکامات کو سمجھانے کے لیے، جس شریعت کو لاگو کرنے میں اتنے صریح حکم دیے، کیا وہ خود ہی کہہ دے گا کہ اب ایک عورت پہلے مرد سے دوبارہ نہیں مل سکتی جب تک کہ بیچ میں وہ زنا نہ کروا لے کسی سے؟ تمہیں عقل نہیں، کیا باتیں کرتے ہو؟ اور اب دیکھیے کہ لوگ سوچتے بھی نہیں، عام لوگ بیچارے، ان کے پاس کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہوتا، وہ ہمارے دوپٹوں اور ہمارے نقابوں اور ہماری داڑھیوں اور ہماری شلواروں سے ہمیں دیندار سمجھنے لگتے ہیں۔ ہاں یہ تسبیح ان کے ہاتھ میں یہ نیک ہی ہوں گے، ہاں ان کی داڑھی ہے یہ نیک ہی ہوں گے، یہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں یہ عالم ہی ہوں گے۔ حالانکہ امام مسجد اور عالم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امام مسجد پانچ وقت میں نماز پڑھا رہا ہے، اس کی قرأت اچھی ہے، اس کی تجوید اچھی ہے، دیٹس گڈ۔ ہم جا کے جب اس سے دین کے وہ مسئلے پوچھیں گے جو بیچارے نے نہیں پڑھے، ہو سکتے نہ پڑھے ہوں، اب اپنی عزت بت رکھنے کے لیے کچھ بھی بتائے گا۔ ہم نے کبھی کسی سے جا کے نہیں پوچھا کہ آپ کا سورس آف نالج کیا ہے۔ ایک کسی صاحب کی میں نے کوئی کہانی کہیں پڑھی تھی کہ وہ صرف کسی مسجد میں ایسے ہی داڑھی کی وجہ سے لوگوں نے آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھیں اور نماز پڑھائیں آپ، کہیں سفر میں تھے کیا تھے، اور بالکل ینگ ایج کا لڑکا تھا کوئی، ابھی اس کا مطلب ایجوکیشن نہیں تھی دینی اتنی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے نماز پڑھائی میرے پاس لوگ آگے، وہ جی مولوی صاحب ایک مسئلہ بتا دیں۔ پھر اس دن ان کو احساس ہوا کہ دیکھیں آج میرے جیسے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کا، سیدھا سادہ معاملہ پتہ ہے، تو اس سے لوگ پوچھ رہے ہیں، تو پھر آج ہم دین کے نام پہ، جب صرف اس لیے کہ چونکہ اس کی داڑھی ہے تو اس کو آتا ہوگا، یا یہ نقاب کرتی ہیں خاتون ہیں، یہ ہر وقت پڑھتی پڑھا رہی ہیں، ٹھیک ہے پڑھنا پڑھانا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن یاد رکھے ہم میڈیکل کی لینگویج میں اس کو بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ کیا ہر ڈاکٹر ہر مسئلے کا جواب دے سکتا ہے؟ کیا آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ گائنی کا بھی ڈاکٹر ہے؟ کیا وہ ڈینٹسٹ بھی ہے؟ ایک جنرل فزیشین ہونا اور بات ہے، اسپیشلائز ہونا اور بات ہے۔ اور یقین کریں یہ کوئی عالم، میرا نہیں خیال، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کے اے ٹو زی مسائل کو سمجھ گیا، ہوں گے کچھ جنہوں نے زندگیاں لگائی ہیں، لیکن کسی کو ہو سکتا ہے باقی سارا دین سمجھ آتا، اس کو طلاق کا موضوع ہی نہیں سمجھ آیا، اس کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا، وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ وانٹ۔ جیسے اناٹومی ہے، لوگوں کو نہیں پسند ہوتی، وہ کہتے ہیں ہڈیوں کا علم بڑا مشکل ہے، ہم نہیں جانتے بھائی۔ اب آپ اس بندے کے پاس گئے نزلے کی دوائی لینے، ساتھ آپ اسے ہڈی کا مسئلہ پوچھے۔ آج ہم نے دین کا یہی حال حلیہ کر دیا۔ ڈاکٹر پہ تو کہتے ہیں نہیں، اب اسپیشلائز پہ جاؤ، اب اس پہ جاؤ، اس سے پوچھو، یہ تو ڈینٹسٹ ہے، یہ فلاں۔ اب آپ میں سے کوئی جائے ڈینٹسٹ کے پاس اور جا کے اس کو کہے کہ میرے معدے میں بڑی درد ہو رہی ہے، تو ہنسے گا نا، وہ کہیں گے کیا ہو گیا، میرا تمہیں کسے پتا دیا۔ بالکل یہی چیز آج ہمیں دین کے نام پہ بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ علم لینے کو تیار کوئی نہیں، خود سیکھ لو، خود بن لو ڈاکٹر، تمہارے سامنے آ جائے گا کون صحیح بتا رہا ہے کون غلط بتا رہا ہے۔ اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں، نہیں 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 نہیں، دین خراب ہو جائے، پتہ نہیں لوگوں کو اصل پتہ چل جائے گا، اصل کتاب کھل گئی پھر تو بڑی کتابیں بند ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، مت اللہ کی آیتوں کا مذاق کیا کرو، اللہ کے دین کا نام لے کر بے دینی نہ پھیلاؤ۔ اور یاد رکھو کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں اسلام دیا، तुम्हें अल्लाह ताला ने मुसलमान बाप के घर में पैदा किया, तुम्हें इतना प्यारा नबी दिया जिसने 23 साल में इतनी मुशक्क़तें सहकर तुम तक दीन पहुंचाया, और तुमने सोचा कि एक 12 रबीउल अव्वल को उनके नाम का मिलाद करा के वो खुश हो देंगे हमसे, और तुमने उनका नाम लेकर चंद नातें पढ़ने को काफ़ी समझा? नहीं, वमा अनसल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमा, और उसकी भी कदर करो जो अल्लाह ने किताब और हिकमत तुम पर नासिल की है। किताब तो सबको समझ आता है, कुरान है, हिकमत क्या है? इससे दो मानी निकलते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब किताब के साथ हिकमत का लफ्ज़ आता है तो इससे मुराद है हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दी। और वैसे अगर आप हिकमत को देखें किताब के साथ, एक और मानी भी है कि किताब तो हर एक के घर में है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे अप्लाई करना है, इसकी तफसीर कह लें, कुरान बयान क्या करती है, तुम्हें अल्लाह ने दी। और आज हम सब कितने खुशकिस्मत हैं, आप सब भी तो अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करते हैं कि आप दो पारों की हिकमत जान गए, आप दो पारों को कुरान के और हदीस की रोशनी में समझने लग गए। कितने लोगों को अपनी किस्मत पर रश्क आता है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहें अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी भी जिंदगियां गुजर जाती इसके बगैर, कितनों की गुजरी हैं और गुजर रही हैं और स्टिल दे आर हैप्पी, हालांकि वो अनसिक्योर है। अल्लाह कह रहे हैं शुक्र करते हो कि तुम्हें अल्लाह ने नेमत इस्लाम दी, तुम पर किताब, तुम पर नबी की बात उतारी। मैं कहती हूँ रबी अव्वल पे अल्लाह के नबी के नाम पे महफिल सजाते हैं जो लोग, उस महफिल में जाके आप जितने लोग अल्लाह के नबी से मोहब्बत की बातें करते हैं ना, उनसे कहें कि आप यहाँ बैठे सिर्फ अल्लाह के नबी की 10 हदीसें सुना दें, छोटी छोटी अतहुरु शत्रुल ईमान सुना दें, तहादु तहाबु सुना दें, हाँ मिन हुस्न इस्लाम तर्कुहु मा ला यानी, ये सुना दें, दो दो लफ्ज़ों की भी हदीसें आपको पता। मैंने तो जहाँ भी एक्सपीरियंस किया मेरे तो मेरा तो दिल घुटने लगता है कि हमें अल्लाह के नबी की ज़ुबान मुबारक से बोले हुए कोई एक हदीस भी पूरी नहीं आती मतन के साथ और सनद के साथ। मोहब्बत के दावे कितने हैं आप सोचिए। हम सोचते हैं कि अपने नबी के नाम पर एक सेलिब्रेशन करके हम खुश हैं और हम उनकी बात नहीं मान रहे। कल आप में से किसी ने, या मुझे सदफ ने गालिबन बताया कि किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि बिलफर्ज़ आपकी अम्मी दूर रहती हैं, आप एक मुल्क में वो दूसरे में, वो बेचारी फ़ोन करती हैं आप उठाते नहीं, वो बुलाती हैं आप जाते नहीं, वो ख़त लिखती हैं आप जवाब नहीं देते, वो कुछ मंगवाती हैं आप देते नहीं, सो ऑन, यानी बिल्कुल एक एग्रेसिव किस्म की बच्ची हैं। और उसके बाद एक दिन आप अपनी अम्मी को फ़ोन करती हैं कि अम्मी आपको पता है आज मैंने इधर क्या किया? क्या किया बेटा? वो मैंने ये किया कि मुझे पता था आज आपकी बर्थडे, मैंने यह एक बहुत अच्छी पार्टी अरेंज की, मैंने बहुत बड़ा केक बनाया, फिर मैंने उसमें खूब मोमबत्तियाँ लगाईं, फिर मैंने अपनी दोस्तों को बुलाया और मैंने फिर उन सब को वो केक खिलाया, और मैंने वहाँ खड़े होकर कहा सब को कि मेरी अम्मी के ऊपर हैप्पी बर्थडे और वट एवर। क्या बताइए, वो माँ जो पूरा साल आपकी यानी गुस्ताखियों को बर्दाश्त कर रही थी, इस बात को सुन के खुश होगी, कहेगी कितनी है अच्छी बच्ची मिली है कि चलो मेरी नहीं सुनती, मुझे मेरे से बात नहीं करती, मेरे मेरी बात की इज्जत नहीं, कदर नहीं, मेरी बुराइयां करे ना करे लेकिन मेरी तारीफ नहीं करती, लेकिन चलो शुक्र है मेरी बर्थडे तो मना रही है। कभी सोचे, ये वो चीज़ें जब आप तासुब के बगैर सुनते हैं ना तो आपका दिल गवाही देता है कि इट्स ट्रू, सच के झूठ। आप में से किसी को ये बात सुन के लगा कि ये बात एग्जैजरेशन है? इट्स ट्रू, हम अपने दिल के आईने को साफ करके ये बातें सुनते हैं तो ट्रू, और दिल में बुगज रख के कहते हैं तो कहते हैं अच्छा ये कोई होगा एलेदीस, ये कोई वहाबी होगा, ये कोई सुन्नी होगा, अच्छा शायद ये शिया ही ना हो, अच्छा ये फलां ना हो, अच्छा ये नॉन मुस्लिम ना हो। हम जब एक एंगल के ग्लासेस एक रंग के लगा के दूसरों को देखते हैं ना, हमें उस रंग से वो सब ख़राब दिखेंगे। आप ग्रीन कलर के ग्लासेस लगा के बाहर जाएँ आपको पूरा शहर ग्रीन दिखेगा, आप ब्लैक लगा के थे आपको ब्लैक दिखेगा, आप सारे ग्लासेस उतार के प्योर अपनी आंखों से देखें घास सबस दिखेगा तो आसमान ब्लू दिखेगा। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी देखना चाहते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं वमन ज़लालेकुम मिनल किताबी वल हिकमा, जो कोई बात करे उससे पूछे बताओ किताब से कैसा ताल्लुक है, हिकमत से कैसा ताल्लुक है, और साथ ही का याइज़ुकुम बिही, वो तुमको इसकी नसीहत कर रहा है। ये नसीहत नामा है, कोई बरकत नामा नहीं है, ये सिर्फ चुमने चाटने की सिर्फ चीज़ नहीं है। हाँ बरकत मिलेगी, जिससे मोहब्बत होती है उसको इंसान चुमता भी है, लेकिन याइज़ुकुम बिही, नसीहत तो करता है, वो तो सुनो, और वत्तकुल्लाह, डर जाओ अल्लाह से, वालमु अन्नल्लाहा बिकुल्ली शयइन अलीम, और जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ को जानती है, हर चीज़ को देखती है। देखिए शौहर बीवी के मामलात, सरासर प्राइवेट मैटर्स, फैमिली इश्यूज़, سوشل ایشوز اور بار بار جو لفظ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ بتک اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اگر کسی انسان پہ ظلم کرو گے تو یاد رکھو کل تم پہ بھی ہوگا، اور اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی کل تمہاری بھی کوئی نہیں مانے گا. آج ہم اللہ کی نہیں مانتے نا، ہماری اولادیں ہماری نہیں مانتی، ہمارے شوہر ہماری نہیں مانتے. اور وَعْلَمُوا میں کہا جا رہا ہے اور علم حاصل کرو، اور جانو کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اس کو خوب پتہ ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں میرے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، شوہر ظالم ہے. شوہر کہتا ہے نہیں، کبھی حالات ایسے ہوتے شوہر مظلوم ہوتا ہے لیکن لگ ظالم رہا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے فکر نہ کرو، لوگ تمہیں ظالم سمجھیں یا مظلوم یہ بڑی بات نہیں، مجھے پتہ ہے کہ تم کیا ہو. پھر اس کے بعد اب اسی اینگل کا ایک اگلا ہو رخ، آیت نمبر 232. اس کو پڑھتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے آپ چھوٹے چھوٹے ضمائر ساتھ ساتھ لکھیں گے تو انشاءاللہ بات بالکل کلیئر ہوگی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ سیم بات مردوں کو کہا جا رہا ہے، مسلمان مردوں کو. نساء سے یہاں مراد ازواج ہے، بیوی کو طلاق دینا. پھر کیا ہوگا؟ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو، مراد ہے عدت پوری کر لے. اب کیا ہوگا؟ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ، اب نہ روکو ان کو. عین دعات لام اس کا روٹ ہے، عدلہ روکنے کو کہتے ہیں، یعنی اب نہ روکو ان کو. یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں آپ نوٹ کیجئے، ڈراؤن ایرو لکھئے، لڑکی کے ولیوں کو، باپ یا بھائی کو. لڑکی کے باپ یا لڑکی کے بھائیوں یا جو بھی اس کے اس وقت ولی ہو، مت روکو اپنی بہنوں کو یا بیٹیوں کو. کس بات سے؟ اَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے. کون سے؟ جن سے پہلے ایک یا دو طلاقوں کے بعد، عدت ختم ہونے کے بعد جدائی ہوئی. بات واضح؟ الحمدللہ. یعنی یہاں اس آیت کے ساتھ وہ واقعہ جو آپ کو میں نے بھی اس لیکچر میں سنایا تھا کہ ماکل بن یسار ایک صحابی تھے، ان کی بہن کی شادی ہوئی، ان کی شادی کے بعد کسی بات پہ انبن ہوئی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. ایک طلاق کے بعد عورت گھر آ گئی، 3 مہینے ختم ہو گئے. اب اس عورت کے پیغام دوسری جگہ سے آنے لگے، اسی میں اس بہنوئی کا پیغام پھر آیا ان کے پاس. تو ماکل کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ بھائی بڑے غیرت والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ہاں، ہم نہیں بھلا کھلا سکتے، چلو بھاگ جاؤ. بہن بھی چاہتی تھی کہ اپنے پہلے ہی شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیں، کیونکہ بعض باتیں بعد میں سمجھ آتی ہیں. خیر وہ بھی چاہتے تھے، بھائی رکاوٹ آ گئے، غیرت کے نام پہ کوئی ضرورت نہیں، قسم کھا لی میں تو نہیں جانے دوں گا اس کو، لو ہم وہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، تھوک کے چاٹ لیں، لو ہم اس کو کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے. قصہ مختصر، انہوں نے کہا میں تو نہیں کرنے دوں گا. یہ آیت نازل ہو گئی، کہا ماکل آپ کون ہوتے ہیں؟ فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، آپ نہیں روک سکتے بہنوں کو بیٹیوں کو اس بات سے کہ وہ اپنے پہلو ہی شوہروں سے نکاح کر لیں. شرط کیا ہے؟ نمبر 1، اذا ترادوا بینهم، جب دونوں چاہتے ہوں. کون دونوں؟ ترادوا کے نیچے لکھیے بہن یا بیٹی اور اس کا شوہر. اور دوسری شرط کیا ہے؟ بالمعروف، معروف طریقے سے، وہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ رہیں گے. دیکھیے یاد رکھیے، وہ لڑکیاں جو بغیر کسی وجہ کے یا کسی چھوٹی موٹی وجہ کے باپ کے یا بھائی کے گھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں نا، اس ساس پہ کہ وہ تو مجھ سے پیار ہی بڑا کرتے ہیں، وہ تو لاڈ ہی بڑے دیکھتے ہیں میرے، میں تو چہیتی ہوں، میں تو لاڈلی ہوں، میں تو اکلوتی ہوں. ان کو پتہ کب چلتا ہے؟ جب واقعی وہ آتی ہیں. بس لڑکیوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہیں کہ میکے میں سسرال میاں کچھ ہے، مینرز ہی نہیں، کوئی سیلیبریشن نہیں، دیکھو سارا دن آئے، رات کو آئے، سو گئے، کام پہ چلے گئے. میکے جاتی ہوں بڑا خوش ہوتے ہیں، دیکھو بھائی کتنے لاڈ کرتے ہیں، اور دیکھے بچے ماموں بچوں کے کتنے لاڑ کرتے ہیں. پھر ذرا شوہر کے گھر میں 19-20 بھی ہوتی نا، تو بات بات پہ سوچتی یہاں تو زندگی جہنم ہے، چلتی ہوں میکے میں، چلتی ہوں بھائی کے، دیکھنا بھائی روز بچوں کو آئس کریم کھلانے لے جائیں گے. پتہ اس دن لگتا ہے جب آپ ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں یا ان کے سر پہ پڑتے ہیں. ایک جملہ لکھ لیں، شاید اللہ نہ کرے زندگی میں کسی کو موقع ایسا آئے، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ شوہر کے گھر کا دکھ بھی میکے کے سکھ سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے. عورت کو، لڑکی کو جو تکلیف شوہر کے اور سسرال کے اندر رہتے ہوئے بھی پیش آتی ہے نا، جب وہ لڑکی پلٹ جاتی ہے نا میکے میں، تو اس کو بعض دفعہ میکے کے اندر ملنے والی خوشیوں میں بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. جب وہ بار بار دیکھے گی بھائی یا اس کے بچے ہیں، क्योंकि हाय मेरे बाप के, मेरे बच्चों के बाप किधर गया। वो भाई और भावत को इकट्ठा खाना खाते देखेगी, फिर रोएगी, हाय मैं अकेली हूँ। इवन माँ बाप को देखेंगी, फिर लड़कियाँ फ़ौरन क्रिटिक हो जाती हैं, पहले नहीं समझ आती। जब आपके पास कोई चीज़ होती है आप कहती है सो के नो प्रॉब्लम, जब नहीं होती फिर आप बार बार नजरें लगाते हैं, फिर वो डिप्रेशन होता है। और जिसको आपने कभी साल बाद 15 दिन के लिए पाकिस्तान गए और उन भाइयों और बहनों ने लाड करने हैं, जब उन भाइयों को पता चलता है कि ये आई अब हमारे ऊपर गई, अब आगे देखो क्या हालात होते हैं, तो फिर वो रोज़ नहीं लेके जाएंगे आइसक्रीम खाने खिलाने, फिर आप कहेंगे भाई भी बदल गए, भाई उन्होंने कुछ कर दिया। अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिका यू अज बी ही, ये नसीहत की जाती है किसको, मन काना मिनकुम यूमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान लाए। आखिरत के साथ और अल्लाह पर ईमान से जोड़ दिया इस चीज़ को। किस चीज़ का ईमान है कि अल्लाह ताला अगर शर में खैर निकाल सकता है, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है ना दोबारा, फिर चलते हैं लोग ठीक ठाक, ऑपरेशन होता है, दिल ठीक कर दिए जाते हैं। तो क्या हुआ अगर एक हाथ टूट गया था और अब रियलाइजेशन होगी, आओ दोबारा मिलने दो। जब यह आयत नाजिल हुई तो माकल बिन जसार ने फौरन अपनी बात को पीछे लिया। ये सहाबा की खूबी थी, थे वो भी हमारे जैसे इंसान, जज्बात उनमें भी थे, गैरत उनमें भी थी, मोहब्बत नफ़रत थी, जहाँ अल्लाह का कोई हुक्म आता था या नबी की ज़ुबान से कोई बात आती थी फौरन पीछे आते। आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक मौके पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कसम खा ली थी कि मैं मस्तों को कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि इसने मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाने वालों का साथ दिया और जो आप उनकी मदद करते थे खत रोक लिया कि मैं तो इसकी कोई मदद नहीं करूंगा। फौरन कुरान पाक में आयत उतर आ गई कि क्या बात है भाई अबू बकर, हाँ अला युहिब्बू, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और दे। अच्छा हाँ चाहता हूँ, तो फिर कहा फिर जो देते थे वही दिया करो पहले। बस ये आयत उतरने की देर थी, अबू बकर सिद्दीक ना सिर्फ जो पहले देते थे बल्कि उसे दुगना देना शुरू कर दिया। कहा था नोहिब्बू बनौरदा, हम चाहते हैं और हम इस पे खुश हैं कि आप हमें माफ़ करें। तो बंदा मोमिन का दिल तो एक पुरकार की तरह होता है, कंपस की तरह, जिधर अल्लाह मोड़े मुड़ता जाता है, जी अल्लाह आयत उतरी, कोई गैरत की बात नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ, कहा ठीक है, उन्होंने दोबारा अपनी बहन का निकाह करा दिया। आज आप देखिए बाज़ दफ़ा फिर बाद में बहनें चाहती हैं हमें जाना है, भाई नहीं जाने देते, बेटियां चाहती हैं हमें जाना है, बाप कहते हैं हम नहीं जाने देंगे। यहां से आपको एक और भी बात समझ आ रही है कि निकाह वली के बगैर नहीं होता। तभी तो कहे ना कि भाई ना रोकें, बहनें खुद आजकल की बहनें कहाँ मानेंगी, दूसरी शादी छोड़े पहली पे नहीं मानती, वो तो बताती हैं फोन करके कि भाई अगर आपको आना हो तो आइएगा, मेरी कल शादी है। और भाई इस पर भी खुश हैं कि शुक्र है उसने पहले ही बताया, वल्लाह इस जगह बैठ के गलत बात नहीं करूंगी, मैंने खुद ये चीजें देखी हैं करीब से। जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं वहाँ आप देखें तो बड़ी गंदगी है, दूर से चमकते हुए चेहरे अंदर गंदगी है। इजाज़त तो छोड़ दीजिए, सिर्फ इत्तला दे और साथ ये भी कि नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, इफ़ यू कैन डू इट्स ओके, अदरवाइज आई एम हैप्पी, आने तो आओ नहीं आते तो घर बैठो, हमें किसी की परवाह नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं ये दोबारा शादी पहले ही मर से क्यों कहा, का ज़ालिकुम अज़्का लकुम, ये ज़्यादा प्योर है, ये ज़्यादा पाकीज़ा तरीक़ा है, बात हर और साफ है। एक औरत का पर्दा एक मर्द से खुल जो चुका तो क्या अब ज़रूरी है किसी और से खुले। बाज़ दफ़ा बच्चे होते हैं, अब एक बच्चे बाप के हैं, दूसरी जगह शादी करोगे तो क्या होगा। देखिए एक जुमला अगर याद रख लें ज़िंदगी में कि हर मर्द मर्द ही होता है और हर औरत औरत ही होती है। कभी भी अगर हम एक औरत को छोड़ के ये सोच रहे हैं ना कि नहीं ये औरत अब मोटी हो गई है, बड़ी हो गई है और ऐसी हो गई, अट्रैक्शन नहीं रही, मैं किसी और को ले आता हूँ, 16 साल की ले आता हूँ, पतली ले आता हूँ, खूबसूरत ले आता हूँ, क्या वो 16 की रहेगी, अगले साल वो 17 होगी, 3 साल के अंदर वो टीन एज से निकल चुकी होगी, आज कमर थी कल कमरा बना होगा उसका भी, क्या बनेगा। आपने बूढ़ा किया इसको, ये आपके बच्चों की माँ बनी है तो अब वो बूढ़ी हो गई, ज़रा आपका फिगर ख़राब होगा, आप कहते इसमें कोई कशिश नहीं रही। याद रखे कभी औरत की जगह परी नहीं मिलेगी और मर्द के बदले में मर्द ही मिलेगा आपको, इंसान होगा, सुबह उठ के ब्रश नहीं करेगा तो बू आएगी उसके मुँह से, गुसल नहीं करेगा 3-4 दिन तो पसीना आएगा, बदबू आएगी उसके पास से। हम सब इंसान हैं, वही बंदा खुश रहेगा जो अल्लाह के फ़ैसलों को ऊंच नीच के साथ कबूल कर ले। जो मेरा नसीब अल्हम्दुलिल्लाह, उनको देखो जिनके पास कुछ भी नहीं है, वल्लाहु यालमु वअंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम थोड़ी जानते हो, जाओ करके देख लो क्या करते हो, खुशी तो अल्लाह से मिलेगी। याद रखिए कि हमारी ज़िंदगियों में एक ऐसा अल्लाह अकबर सेटअप बन चुका है ज़िंदगियों का कि हमारी पूरी ज़िंदगी का एक ही गेटअप है कि शादी करनी करानी, अपनी या बच्चों की। घर बनाना और शादी करनी, ये दो बैग बैग हमारे मोटिव है। कभी हमने सोचा भी नहीं कि हम तो किसी और काम के लिए आए थे। शुक्र है राह जाते अल्लाह हमारे काम करा रहा है, वक्त पे बच्चों की शादियाँ हो गई, अपनी हो, जैसे भी समझो अपने घर में रहो। किसी का एक आर्टिकल पढ़ा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने किसी और क्लास में भी शेयर किया था, तो यहाँ फिर याद आ गया। एक बात था, तो उसने किसी आलम दीन को एक सवाल पूछा, कहने लगे कि मैं दावत का काम करता हूँ, तबलीग का, और इल्म के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन आजकल बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है? कहने लगे कि मेरी बेटी वापस आ गई है, कुछ अनबन हो गई है दामाद से, तो अब बेटी इधर है और मैं उधर हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, मैं इस वजह से मेरा दीन का काम रुक रहा है। इन्होंने उससे कहा कि ये बताओ, कुछ सवाल पूछे उसके दामाद के बारे में, उसमें ये ख़राबी है? कहा नहीं, ये ख़राबी है नहीं। यानी बिग जो भी एक शरई ऐब होते हैं वो नहीं, नमाज रोज़े का वो पाबंद है, यानी इनकी बात के साथ उनको लगा कि मर्द में दीन के नाते से कोई नक्स नहीं है। कहा फिर, कहा आप ये बताओ कि वजह क्या है? कहने के बस ऐसी आदतों का इख्तलाफ। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं अपनी इस बच्ची को वहाँ से तलाक दिला के घर बुला लूँ, या फिर इसको अपने जो हालात हैं वो करूँ। तो इनका जो जवाब है, ये वहीदुद्दीन साहब है, इनका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। इन्होंने कहा कि बात सुन लें, अब आपके पास दो रास्ते हैं, या आप एक बाप बन के सोचें और या आप एक दाई दीन बन के सोचें। अगर आप वाकई एक बाप बन के जीना चाहते हैं ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला आपकी बेटी है या आपके बच्चे हैं। फिर जाइए उनकी भुगतिए, आज इधर जाएं तलाक होगी, ये होगी, सुलह कराएं, दिस एंड दैट, फिर कल ना हो फिर उसका रिश्ता ढूंढें, और आप इसमें इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि आप दीन का काम नहीं कर सकते। और अगर आप इस मौके पे एक उम्मते मुस्लिमा के फ़र्द बन के जीते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह ने जो एक मनहज दिया, आप लोगों की इस्लाह का काम कर रहे हैं, तो आप जाइए अपने दामाद और बेटी को बिठाएं, थोड़ी बहुत बात करें, निगोसिएशन कराएं, और बेटी को रुख्सत करें, उसको उसके घर करें, और आप कल से अपने काम पे आ जाएं। जहां भी जाएगी वहां खराबियां होंगी। बात कितनी सच है। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर इतने इन्वॉल्व होते हैं, यकीन करें दीन का काम तो एक तरफ कर दें, नमाज़ नहीं सही पढ़ी जाती, इसीलिए आगे आप देखेंगे नमाज़ों का तस्करा आएगा, मुतासिर होती हैं नमाज़ें। तो ज़िंदगी का मकसद क्या है? कि जो है कबूल कर लो, इस पहले कोशिश करो। हदीस में आता है, काम से पहले मशवरा करो, फ़ाइज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, सूरत आले इमरान की आयत है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह करीब, कि जब कोई काम करना है खूब सोचो, खूब पूछो, तशावर, मशवरा करो, इरादा करो, इस्तखारा करो, अब अज़म कर लिए, अब जो है सो है, फिर ये मेरे रब का फैसला है। तो इस मामले में भी यही बात कह दी कि अल्लाह को पता है, तुम्हें नहीं पता। क्या नहीं पता? कि कल इस मर्द से तुम इसलिए नहीं दे रहे कि भाई इसने पहले बीवी को, मेरी बहन को तलाक दी थी, कल इससे भी बुरा मिल जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर लोग पीछे पलटना चाहते हैं और पलट के देख नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ। देखिए एक छोटी सी और मिसाल शेयर करती हूँ, शायद फ़ायदा हो। आप में से कोई ड्राइविंग करता हो, या जिसको भी आप ड्राइविंग करता हो, तो रोज़ ही देखते होंगे लोगों को, और कुछ नहीं तो ड्राइवर को ही देख लें। किसको देखता है वो? कहाँ देख रहा होता है? सामने देखता है ना, पीछे भी देखता है। एक छोटा सा मिरर लगा होता है, जिसको बैक मिरर लगा होता है, साइडों पर भी लगे होते हैं। पीछे का शीशा छोटा है, आगे का बड़ा। आप ज़रा इमेजिन करें कि आगे का शीशा कर दिया जाता सिर्फ बैक मिरर जितना, और पीछे की स्क्रीन ऐसी ड्राइवर को दिखाई जाती जो बहुत बड़ी है, तो क्या होता? हादसा होता। आगे देखता है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो बैक मिरर में देख लेता है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और अमूमन कब करता है? जब ज़रा साइड चेंज करनी होती है। ज़िंदगी के असूल में, ज़िंदगी में यही सफ़र रखें, आगे देखिए, फ्रंट मिरर बिग रखिए, ऑप्टोमिस्टिक रहिए। यह आपके लिए चैलेंज है, आपको चेंज करना है हालात को, आपको अपने दिल को बदलना है, आपको अपनी आदत को बदलना है, आप दूसरे के रवैये को बदलें। आपको लगता है कोई दूसरा आप पे जुल्म करता है, आप बदलिए, किल विद काइंडनेस, और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो पीछे की कोई बात ज़्यादा है तो बस आगे देख ले। जो लोग ज़िंदगी के सफ़र में बैक मिरर में देखते रहते हैं, वो कभी खुश नहीं रहते, माजी को रोते रहेंगे, हाय ऐसा ततल ही। और शोहर बीवी के मामले में ये बेस्ट रसूल है, आज देखें कि आज का दिन आपका कैसा गुजरे। आप सुबह उठते ही कहते हैं कल की कोई तलखी, हाय आपने मुझे दुखाया, आपने मेरा दिल तोड़ा, रात गई बात गई, छोड़ो, मिट्टी डालो, आगे देखो। हम जब रगड़ते रहते हैं ना रिश्तों में, तो कभी खुश नहीं रहते, और कभी भी आइडियल सिचुएशन हो नहीं सकती जब तक बंदा दोनों चीज़ों को साथ लेकर ना चले। कवान तुम ला तालमून, अल्लाह ताला जानते हैं और तुम नहीं जानते, तुम्हें इस बात का नहीं पता। अब यहाँ तक हमारा एक मौजू पूरा हुआ, तलाक का, जिसमें सिर्फ शौहर और बीवी झगड़ रहे थे। अब अगली आयत में ताल्लुक है कि तलाक हो रही है और बच्चे भी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू होता है, इसके लिए आयत 233 में हमें कुछ हिदायत मिलती हैं। आइए देखते हैं। वल वालिदात युर्दिन औलादहुन्न हौलैन कामिलैन, और माएँ दूध पिलाएं अपनी औलादों को 2 साल मुकम्मल। पहली बात, हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, उसको अल्लाह ताला ने एक ऑनर दी है, एक रिस्पेक्ट दी है कि अपने बच्चों को जानवरों के दूध नहीं इंसानों के दूध पिलाओ। अल्लाह ताला ने औरत को जो सीना दिया है ना, असल में ये एक फूड फैक्ट्री थी, बच्चे की खुराक थी। अल्लाह ताला को पता था कि औरत खुद नहीं कमाती, खुद नहीं बाहर जाती, कोई दूसरा उसकी सुने ना सुने, खुद तो पेट पे पत्थर बांध लेगी, लेकिन ये मासूम जान का क्या करूँ, का कुछ नहीं करूँ, इसको अपने जिस्म से दूध पिलाऊँ। अल्लाह ने इस बात की दलील बना के बच्चे के साथ ही माँ के सीने में दूध डाल दिया। और दूसरा, अल्लाह ताला ने इस बात की दलील दे दी कि वहुवा अर्रज़ाक वल्लाहु खैरु रासिकीन, इंसान दुनिया में बाद में आता है, उसके हिस्से का रिस्क माँ के सीने में पहले आता है। अल्लाह ने ये एक नेचुरल वे रखा है। 9 माह के करीब जब बच्चा माँ के पेट में रहता है ना, तो माँ के पेट से खाना लेता है। माँ अगर ऐसी सब्ज़ी खा लेगी ना जिसमें बादी है, तो बच्चे को भी बादी फील होगा। गैस वाली खाएगी उसको भी गैस होगा, गरम खाएगी उसको भी गरम लगेगा, ठंडा खाएगी उसको लगेगा। ये माँ के पेट में खुद ब खुद चल रहा होता है, बच्चे को मांगना नहीं पड़ता, अल्लाह खुद देता है। जब बच्चा बाहर आ गया, भूख लगती है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ट्रांसमीटर लगाया हुआ है, जब वो बचता है ना तो बच्चा रोता है, पता चला बच्चे को भूख लगी। माँ कोई इंतज़ार ना करे, उसको अपना दूध पिला दे। लेकिन अफसोस की बात है कि जब इंसानों की इंसानियत मसख होती है, आप कह सकते हैं कि जब उस पर हैवानी जज्बे गालिब आते हैं ना, जबिल्लत के तकाज़ों पर जीता है ना, तो फिर वही चीज़ जो एक मकसद के लिए दी होती है ना, उसको गलत इस्तेमाल करता है। कि बाज़ औरतों ने तो सोचा कि सीना सिर्फ मिलाई बॉडी के कर्व्स के लिए, फिगर सेट करो। बाज़ औरतें इसलिए दूध नहीं माँ बच्चों को पिलाती हैं कि इससे फिगर ख़राब हो जाएगा, सीना ढलक जाएगा। कुछ इसलिए नहीं पिलाती हैं कि जॉब नहीं कर सकेंगे, फिर बच्चे को 6 दिन का बेबी सिटर के पास छोड़ के जा नहीं सकेंगे। बाज़ बाउंड होने के डर से, और बाज़ बाज़ारों के चक्कर कम हो जाएंगे, और वो सीने जो अल्लाह ने नस्लों की खुराक के लिए रखे थे, वो गैरों को दिखाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये जिस्म का वो हिस्सा है जिसको सबसे ज़्यादा नंगा किया गया, वल्लाही औरत खुद भी नंगी हुई, दूसरों ने भी कर दिया। अल्लाह ने कहा था कि इसको छुपा के रखो, हमको हमने इसे सजाना चाह, जो कढ़ाई कराएंगे वो सीने पे होगी। पहले ओढ़नियाँ थी, ओढ़नी गई। कभी गौर करके इंसान देखे, ये बातें करनी तकलीफ़ के साथ निकलती हैं मुँह से, लेकिन कभी हम सोचते हैं कि अल्लाह ने जिस्म का जो हर उस हमें दिया है, हम उसको उसी काम में ला रहे हैं जिसके लिए दिया। मुंह से खाना था खा रहे हैं, आंखों से देखना है देख रहे हैं, कानों से सुनना था सुन रहे हैं, कभी किसी ने मिस यूज़ करने की कोशिश की? तो बाकी जहां सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, हम उनसे ही गंदे काम क्यों कराते हैं, उनको ही गलत जगह पर इस्तेमाल क्यों कराते हैं? क्यों सोच लेते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें फिगर्स इसलिए दिए हैं कि हम इससे दूसरों के ईमान बेचें और ख़रीदें? औरत को जो लिबास के पहनने के जो तकाजे सिखाए जाते हैं, उसमें ये बहुत बड़ी बात है कि वालिया दरिब न बिखुमरी हिन्न अला जुयूबी हिन्न। आप पढ़ेंगे अभी बहुत वक्त है, फिक्र ना करें, 18वें पारे में ये बात आएगी। लेकिन रब वही है कि अपने दुपट्टों के आंचल, अपनी ओढ़नियाँ, अपनी चादरें सीनों पर डालो, ये बच्चों की खुराक है। वैसे दूध खुला पड़े कहते बच्चे को ना पिलाओ, मक्खी बैठ गई ना पिलाओ, ओपन पड़ा रहा फीडर ना पिलाओ, और जो चीज़ अल्लाह ने कुदरत के साथ दे दी उसको खोल के पेश करते, फिर कहते नस्लें बिगड़ गई। जो माँ अपना दूध पिलाती है ना बच्चे को, वो सिर्फ दूध नहीं पिला रही होती, वो साथ जज्बात पिलाती है। माँ की फितरी तस्कीन होती है बच्चे को दूध पिला के। आप कहते हैं कि बच्चा जब माँ के वूम में होता है ना, मदर यूट्रस रहम में, तो वो इस तरह से होता है। कभी आपने देखा फीटस यूं गोल जैसे हाफ माँ के पेट में इस तरह से बैठता है? आज भी बच्चे को जब हम गोद में लेते हैं तो यूं लेते हैं ना, तो वो गोल सा हो जाता है, इससे उसको सिक्योरिटी होती है। बिल्कुल यही कैफियत वो दुनिया में आने के बाद भी चाहता है। उसके लिए क्या होता है, जब बच्चा दुनिया में आता है तो माँ उसको जब दूध पिलाने के लिए अपनी गोद में लेती है ना, वो बिल्कुल उसी एंगल में आता है, इसीलिए आप देखें कि अक्सर बच्चे मुंह में दूध के जाते ही 2, 3, 4 घूंट लेंगे, सो जाएंगे। उनको सुकून मिलता है कि हम अपने असल बिस्तर पे आ गए। इसके बरक्स जब आप बच्चे को डाल दें क्रेडल में, सीधे बिस्तर पर डाल देते हैं, पकड़ाएं उसको फीडर, उसको इतना सख्त फीडर आप दे रहे हैं, वो उसको फीडर कैसे पिएगा? वो इनसिक्योर फील करता है। और पहले तो ये था चलो लिटा के उसके मुंह में फीडर डालो ताकि आदत हो इसको खुद पीने की। अब तो मैंने एक जगह देखा, मैं हैरान हो गई कि इन माएँ अपने आप को कितना हैंड फ्री करना चाहती हैं। एक फीडर था बच्चे का, अब आप ना खुदा के लिए अपने बच्चों के लिए ऑर्डर कर दें, वादा करें फिर बताऊँगी, वरना और एक मसला आ जाए कि मदर केयर वालों को कहें वो फीडर हमें भी दें, हम भी एहसान, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। यानी पूरा एक ऐसे सेमी सर्कल जैसे बच्चे के बेड के ऊपर रखने का, उसका साइज़ के साथ एक स्टैंड है और उसके अंदर फीडर रखने की जगह है, कि फिर वो जो पकड़ना पड़ता था, या पहले माएँ सरहाने रखती थी, पिलो रखती थी कि बच्चे का फीडर सही रहे, अब उसकी भी ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद उसके साथ सेट होता है और बच्चा माँ के हाथ भी ना उसको मिले। कैसे बदकिस्मत बच्चे हैं कि जिनको पैदा होते ही माँ की गोद ही नहीं फिर मिलती, और अपनी माँ गई है दूसरों के बच्चे पालने क्योंकि वहाँ से पैसे मिलने हैं डे केयर में बारने हक में, और अपने बच्चे पाल रही है कोई मुशरिक औरत। कल अगर वो हमें ओल्ड होम्स में जाके फेंक आते हैं तो टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब क्यों रोते हो कि हाय वो आते नहीं? आप देखिए कि जब बूढ़े माँ बाप के साथ बच्चे सिर्फ पैसों का ही मामला रखें कि हम पैसे जो भेज देते हैं और क्या करें, हाँ हमने आपको डॉलर्स जो भेज दिए, हमने क्रोन भेज दिए, तो वही माँ बच्चे से कहे कि अच्छा जब तू पैदा हुआ था तो जब तू रोता तेरे हाथ में पैसे पकड़ा देती तो तू खुश था। इंसान जज्बात के साथ है, अल्लाह ने फित अल्लाह ने हमें पैदा किया, उसी ने ये किताब बनाई है, उसी ने लिखी है, उसी ने ये बोल के दिए हमें, आज हम उसको छोड़ के और पैसे कमाने के लिए, और कहते हैं उसी बच्चे के लिए मैचिंग सॉक्स भी तो ख़रीदने हैं ना और मैचिंग जूतियाँ लेनी हैं, इसलिए जॉब तो करनी पड़ेगी। बच्चे को कोई केयर नहीं, आप उसको ब्लू पहना रहे हैं कि पिंक पहना रहे हैं, यह आपका शौक है। बच्चा दुनिया में तो उससे पहले कमरे से जाके बैठे हुए आप उसके लिए, और फिर अपडेट रहने के लिए आप कहते हैं अब दो ही बच्चे, बल्कि अब तो शायद एक ही काफ़ी है, उसको आपने उसकी बहन छीनी। माँ बाप बच्चे का हक ले रहे हैं, वो कल पूछेगा मेरी बहन किधर है, मेरा भाई किधर है, फिर एक बहन आएगी वो कहेगी मेरी बहन किधर है। इतना हम ट्रैप हुए, इतना हमने सोचने पर हमारी अकल पर ताले पड़े, हम माहौल को देख के जीते हैं, कहते हैं जो सब करते हैं हमें भी ये करना, दो बच्चे अच्छे दोनों ही रोते रहेंगे, और वो भी मिले हैं तो बेटे ही मिले पहले, बेटी आ जाए तो चलो ठीक है, बस दो बेटे ही हों, बेटियों को क्या करना है, नस्लें कैसे चलेंगी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पैगाम दिया 2 साल पे। अब ये तो थोड़ी सी बात थी एक पैगाम की, हर माँ पिलाती है, पिलाना चाहिए, आज साइंस कहती है तो पिलाएंगे। आपको पता है कि आज लोग साइंस के ज़रिए मुसलमान हो रहे हैं, और इंशाल्लाह लिख लें ये बात, ज़िंदगी रही तो आप भी देखेंगे, हम बोन मुस्लिम पीछे होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि हमें लड़ना बहुत है, अभी हमें घर बनाने हैं, अभी हमें शादियों में जेवरात पहनाने ओढ़ने हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं रिसर्च की, और नॉन मुस्लिम रिसर्च कर रहे हैं इस कुरान पे, और साइंस के फिगर सारे कुरान से साबित हो रहे हैं। अल्लाह ने खैर का वक्त लाया, आप देखिएगा कि एक दौर आएगा कि साइंस जो तरक्की करेगी ना वो सब कुरान से प्रूव होगा, और ये नॉन मुस्लिम इसको देख के मुसलमान होंगे कि कैसे ये। मैं एक लेक्चर शाम के लिए तैयार कर रही थी नबी सल्लम के बारे में देना, मैंने तो मैं कुछ नॉन मुस्लिम्स के कोटेशंस पढ़ रही थी, मैं पढ़ते हुए सोच रही थी अल्लाह हम मुसलमान किधर हैं, हमने तो ऐसी बातें की हैं हमारे नबी के कार्टून बन रहे हैं फलाएं फलाएं, देखो कितना अच्छा कहने वाले लोग हैं हमारे नबी को, क्योंकि ये सच है। तासुब ना होगा तो सूरज को कोई बुरा नहीं कहेगा, चाँद को कोई बुरा नहीं कहेगा, हमारा नबी तो चाँद है, वो तो एक सहरा में खिला हुआ फूल है जिसकी महक से सारी दुनिया गुलगुलजार हो गई, ये तो हम नकम्मे हैं। यकीन करें आज अगर इस्लाम थोड़ा डाउन टू प्रॉडन है, हम मुसलमान हैं इसकी वजह, हमारा नबी तो 14वीं का चांद था, और आज हम कहते हैं उसके नाम पे गाने गा के हम खुश हो जाएंगे, हम वतन की खिदमत करेंगे हाथ में गिटार पकड़ के और मुल्क का कोई गीत गाते हुए, नाच नाच के बताएंगे कि पाकिस्तान से प्यार है, इसी तरह गा गा के नबी को बताएंगे तुझसे बड़ा प्यार है, और जब बात आती है तो कहते हैं अच्छा ये तो फिर बातें नहीं आज के दौर में हो सकती। मेरी बातें ज़्यादा तलख तो नहीं आज हैं, कभी कभी मुझे खुद भी एहसास होता है कि ये बातें मैंने कभी नहीं सोची होती मैं जो पढ़ाऊँगी, तैयारी जब मैं करती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह आयतों का ये दिल में, लेकिन ये दर्द अंदर से आता है, ये किसी जगह लिखा हुआ नहीं होता, ये इंसान के जो चीज़ अंदर महसूस होती है ना उसी को लेके आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। फ़ाइन तस्खबून, ओ मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, वो बुनियादी तालीम जो अल्लाह ने किताब और हदीस की सूरत में दी थी उसको कितना पढ़े हुए हो, और सिर्फ गुरगुला है दीन के नाम पे, सिर्फ गुरगुला है शोशा। अल्लाह के नबी ने कहा एक वक्त आएगा ला यबकी मिनल इस्लामी इल्ला इस्मा, नहीं बचेगा इस्लाम में से मगर सिर्फ उसका नाम, नाम का मुसलमान। और फरमाया कि ला यबकी मिनल कुरानी, नहीं बचेगा कुरान में से मगर इल्ला रस्मन, सिर्फ रस्मन लोग कुरान पढ़ेंगे। कोई मर गया हो कुरान पढ़ दो, कोई पैदा हुआ पढ़ दो, बिस्मिल्लाह करा लो, इसकी आमीन कर दो, इसकी ये कर दो, शादी पे सर से गुजार दो। क्या आज रस्मन नहीं कुरान पढ़ते? कितने लोग हैं जो शौर से इस कुरान को पढ़ना चाहते? ये आयतें आप आम करें, फिर देखें कि लोगों की ज़िंदगियों के गम दूर होते। नहीं, ब्रेस्ट कैंसर के खात्मे का इलाज है इस आयत में कि वल वालिदातु युर्दीना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। आज साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि वो औरतें जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैंने ख़ुद कानों से डॉक्टर की बातें सुनी है। किसी ऐसी पेशेंट को पूछ रही थी कि क्या आपके बच्चे हैं, जब उन्होंने कहा हैं तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह नाउ यू आर सिक्योर, हो सकता है फिर भी होगा लेकिन सिक्योर्ड है वो कैंसर औरतें जिनके बच्चे हैं और जो अपनी नॉर्मल मैरिड लाइफ गुजार रही हैं। माँ के जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं इस दूध में, बच्चे बीमार नहीं होते, उनको डायरिया नहीं होता। ये तो बड़ी बूढ़ियों से पूछ लें, जब तक बच्चे माँ के दूध पे पलते हैं ना उनको डायरिया होता है, क्योंकि बच्चे का दूध आना ही वही है जो साफ़ सुथरा फ्रेश, ना गाढ़ा है। आम जो बच्चे बॉटल का दूध पीते हैं, माँ हर वक्त परेशान, वो दूध ज़रा ज़्यादा डल गया था, माँ ने कहा ज़रा जल्दी जवान हो जाए, जोश में एक की बजाय दो चम्मच डाल दिए, पता चला वो उसको लूज मोशन लग गए, कभी क्या पतला रह गया था, ये रो ही रहा, इसकी भूख नहीं ख़त्म हुई। अल्लाह ने यूँ सेट किया, आपको होता है बिल्कुल पानी की तरह आता है शुरू में, अगर आप में से किसी ने मेडिकल पढ़ी है तो बिल्कुल पानी होता है, फिर हर दिन बच्चे की नेचुरल डाइट जितनी बढ़ती है ना तो दूध ठीक हो जाता है और बाद में पतला रहता है लेकिन फुल एनर्जेटिक होता है। ये उसने बनाया, उसने माँ बनाई, उसने बच्चा बनाया। फिर आधी रात को उठने की जहमतें, जाओ धो बोतल निकालो, ये करो वो करो, नेचुरल जब चाहो डालो पिला के सो जाओ, बच्चे का भी इत्मीनान माँ का भी इत्मीनान, लेकिन जब नहीं पिलाएंगे तो ख़राबी है। अब यहाँ हौलैन कामिलैन की बात हुई तो दो साल पूरे, दो दफ़ा है ना, हौलैन भी तस्नी है ड्यूल और कामिलैन भी तस्नी है, दो साल किसके लिए है, ये लड़के के लिए कि लड़की के लिए, या फिर हमसे एक गलती हुई, हमने सोचा कि औरत ज़रा नीचे ही रहे, और हमारे पाकिस्तानी कल्चर में तो ये बहुत ही, इंडियन कल्चर में कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि लड़के लड़की को एक जितना दूध पिलाओ, मरूफ मसला है लड़के को दो साल पिलाओ और ढाई साल पिलाओ और लड़की को शायद कम डेढ़ साल पिलाते हैं कुछ, हालांकि ये हौलैन कामिलैन हर एक के लिए, लड़का हो के लड़की दूध के अंदर डिफरेंस नहीं। हम जान के औरत को एक कदम पीछे ही रखना चाहते हैं, कहते हैं औरत बराबर आ गई, वैसे जाके शेक हैंड करेंगे फलां, कोई अगर कोई ऐसी गोरी औरत मिल जाएगी, और अपनी औरतों को कहते हैं ज़रा तुम चार कदम पीछे चला करो मेरे से, दोनों के लिए की मसला है। यहाँ भी हुक्म है, आगे भी एक जगह आएगा, इंतहाई मुद्दत है। अब थोड़े से मसाइल भी लिख लें, वैसे तो आगे भी जाके हम कर सकते हैं सूरह निसा में बात, लेकिन पहली बात है कि माँ को पूरी कोशिश करनी चाहिए बच्चे को अपना दूध पिलाएं, किसी मजबूरी से नहीं पिलाती, कोई प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, इट्स ओके। फिर इंतहाई मुद्दत दो साल है, इससे पहले छुड़ा सकती है किसी भी रीज़न से, लेकिन दो साल के बाद नहीं पिला सकती, असल जो हुक्म है ना इसमें वो ये है। और आज रिसर्चेस ने ये बता दिया कि जो बच्चे दो साल के बाद भी माँ का दूध पीते हैं वो कुंजेन हो जाते हैं। बस लोग लड़कों को ज़्यादा देर पिलाते हैं और आप देखिए वजह भी फ़र्क साफ, क्यों भाई दो साल क्यों नहीं, चार साल क्यों नहीं। नंबर एक, दो साल के बाद बच्चा जो है उसके दांत आ जाते हैं, पहले ही आ चुके होते हैं, माँ के लिए अज़ियत का सबब है, बच्चे तकलीफ़ देंगे। फिर दूसरी बात है कि अगर दो साल तक सिर्फ दूध ही पिलाना है तो फिर सारी ज़िंदगी दूध पिएगा, उसको खाने की तो आदत ही नहीं पड़नी। वैसे भी जो बच्चे चार माह के होने के बाद भी अगर कोई सॉलिड पे नहीं आते तो बाज़ दफ़ा माओं को बहुत तंग करते हैं। फिर इसी तरह ये है कि दो साल के बाद बच्चे के अंदर शऊर आता है, जिस्म की पहचान होने लगती है, तो ये माँ और बेटे के, बच्चे के रिश्ते के तकद्दस के लिए भी है। उल्फत आप प्लीज़ आइएगा, आपकी हेल्प चाहिए। फिर इस तरह से ये है कि इन दो सालों के बीच के अंदर जो पिलाने में अमूमन जो एक फितरी साइकिल है ना, फिर दूसरे बच्चे की उम्मीद हो चुकी होती है। हमारे यहाँ तो हमने हर इख्तियार चाबी अपने हाथ में रखी हुई है ना, ऐसा नहीं है। दो साल के अंदर फिर दूसरा बच्चा आएगा तो वैसे ही माँ को छोड़ना ही पड़ता है जबकि नई प्रेगनेंसी होगी। तो बहरहाल अब यहाँ तक तो ये बात हो गई आम हालात में, ठीक है, लिमन अराद अन युतिम्मा रज़ा। अब इसके बाद आगे क्या है देखिएगा, अब इसका तलाक के साथ सिलसिला कैसे जुड़ता है। वह अलल मौलूद लहू रिस्कुहुन्ना, और मौलूद के ऊपर है इन दोनों का रिस्क। मौलूद यहाँ कौन है, डाउन एरो लिखिए, बाप। यहाँ से आप छोटा सा एक इसका सब टाइटल लिख सकते हैं आयत का कि तलाक हुई और बच्चा भी था, माँ नर्सिंग मदर थी। यानी एक मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है और बच्चा भी है उसका, अब क्या मसला है? आज के दौर में ये आम इशू है, इस कल्चर का तो आम ही इशू है कि जी तलाक हो जाए तो फिर क्या किया जाए, बच्चों का क्या किया जाए। तो इस्लाम बता रहा है कि बच्चा माँ के पास रहेगा और उस माँ का और बच्चे का खर्चा कौन देगा, मौलूद लहू, बाप देगा। ये कहने की बजाय कि बाप देगा, ये क्यों कहा कि बच्चा है जिसका मोहब्बत दिलाई जा रही है। ज़रा जिसका बच्चा है वो उसी का ही बाप है, वो सभी कुछ उसके साथ है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ बाप की बजाय मौलूद लहू कहकर अल्लाह सुबहान ताला ने इस बात का यकीन दिला दिया कि मर्द अपने बच्चों के ही माश के ज़िम्मेदार होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है बच्चे के ज़िम्मे, लेकिन तलाक की सूरत में जब बच्चा माँ के पास है तो क्या होगा, लहू रिस्क हुन्ना व किस्वत हुन्ना, उन औरतों का रिस्क। यहाँ औरत से मुराद लिखिए डिवोर्स्ड वुमेन, जिसको शोहर तलाक दे चुका है लेकिन उसकी गोद में उसी शोहर का बच्चा है। वह किस वतु हुन्ना, और इन दोनों उनका कपड़ा, बच्चे को तो दूध माँ पिलाएगी लेकिन माँ क्या खाएगी और माँ क्या पहनेगी ये बाप देगा। ला तुकल्लफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, न तकलीफ दिया जाए कोई नफ्स मगर अपनी वसत के मुताबिक। कैसे, वला तुदार वालिदा तुम भी वलदिहा, न तकलीफ़ दी जाए माँ को उसके बच्चे की वजह से। वला मौलूदुल्लहू बिवलदिही, और न बाप को उसके बच्चे की वजह से। माँ को तकलीफ़ देना क्या है बच्चे की वजह से, नंबर एक कि शौहर कहे कि दूध तो तुम पिलाओ मेरे बच्चे को तलाक मिलने के बावजूद भी, लेकिन पैसे ना दे उसको, उसका खाना पीना ना दे, उसकी जिम्मेदारियाँ पूरी ना करे। इसी तरह बाप को तकलीफ़ देना क्या है कि औरत जो है वो मर्द की कमाई से ज़्यादा का मुतालबा करे, कहे मुझे 5,000 का जोड़ा चाहिए भाई, मुझे तो महंगे खाने चाहिए। नहीं, ना बाप पे मुश्किल आए ना उस पे। और इसी तरह अगर कभी शादी इस तरीके से टूटे, यानी बेवगी हो जाए या मर्द बीच में से निकल जाए, वो ये जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी करना चाहता, तो वालल वारिसि मिस्लु ज़ालिका, तो उस मर्द के वारिस देंगे, यानी फिर उस बच्चे का खर्चा उसके ससुराल वाले देंगे, मर्द के भाई बाप वगैरह वो देंगे। ये किस सूरत में होता है, जबकि कोई फौत हो जाता है, यानी मीन बेवकी की सूरत। हाँ जी, ये बेवकी की सूरत में है कि फिर वो घर वाले ज़िम्मेदारी उठाएंगे इस चीज़ की। और फिर क्या सिर्फ 2 साल ही पिलाना है, नहीं, ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्या करो, फ़ैन अरादा, और अगर वो दोनों इरादा करें, कौन दोनों, बाप और माँ, फिसालन दूध छुड़ाने का, फसला वसला का अपोजिट होता है दूध छुड़ाने का। यानी ये अगले सवाल का जवाब है कि क्या 2 साल से कम में नहीं छुड़वा सकते दूध। बस उस औरत के अब कहीं और शादी हो रही है और अगली शादी वाले कहते हैं कि जी बच्चा हम नहीं रखेंगे, या कोई ऐसी और सूरत हो सकती है, तो कहा दूध छुड़वा सकते हैं अंतरा दे मिन होमा। देखिए ये कब की रजामंदी हैं, दोनों राजी हों, ये कब होंगे, तलाक की बात की बातें हैं। हमारे यहाँ शादी शुदा ज़िंदगी में फ़ैसले नहीं रजामंदी से हो पाते, तो शादी के बाद कहाँ होंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इसी बात की बात करके बता दिया कि जब दोनों राजी होंगे फिर उससे दूध छुड़ा दिया जाए तो गुनाह नहीं। हाँ, व तशावर इन फला जुनाह अलैहिमा, और मशवरे के साथ छुड़वाओ फिर कोई गुनाह नहीं है। इससे मशवरे की अहमियत पता चलती है, और इससे ये भी पता चलता है कि माँ से भी मशवरा लेना चाहिए। हमारे यहाँ माँ का बस इतना ही काम है, बच्चा पैदा कर दे, उसका नाम रखने से ले के उसके पालने खाने पीने पहनने ओढ़ने में भी बाज़ औरतों को इख्तियार नहीं होता, कोई फूफो की मर्ज़ी का, कोई दादी की मर्ज़ी का, कोई अब्बा की मर्ज़ी का, और जिसने पाला है वो बेचारी पैदा किया वो अलग हो जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वइन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम, और अगर तुम ये इरादा करते हो कि दूध पिलवाओ अपनी औलादों को, यानी इस औरत से नहीं पिलवाओ बल्कि कोई और बाहर से, अरब का कल्चर था कि वो दूसरी औरतों के दूध पिलाते थे, जिसको दाया बोलते हैं या फोस्टर मदर बोलते हैं, दूध शरीक बहन भाई जैसे होते हैं, तो कहा कि फला जुनाह अलैकुम, कोई गुनाह नहीं है। शर्त क्या है, इदा सल्लम तुम मा आते तुम बिल मारूफ, जबकि तुम सौंप दो उनको वो चीज़ जो तुमने देने का कमिट किया था, यानी दूध पिलाते थे, वो प्रोफेशन था उस दौर का, उस दौर में ये फार्मूला मिल्क नहीं निकला था शायद इसलिए हैं। और लोग शहरों के बाहर जो खुली फिज़ा में पलने ली औरतें थी, देहाती स्ट्रॉन्ग जिस्म की होती थी, उनसे दूध पिलवाते थे। इसीलिए आप सुन चुके होंगे कि अल्लाह के नबी सल्लम को भी दाई हलीमा सादिया के पास भेजा गया था, और उस वक़्त क्या बरकतें मिली थी। आप लोग कोशिश करें इस सफ़र रबीउल अव्वल में जाके रहीकुम मख्तूम जितनी भी मेरे हाले वेबसाइट पे अपलोड है उसका मक्की दौर सुन लें। उसमें हमने सिर्फ एक आए लेसन में नबी सल्लम का चाइल्डहुड किया था, कैसे दूध पिया और बीबी हलीमा ने क्या गवाहियाँ दी थी कि इस बच्चे को लेने की देर थी कि मेरे घर में बरकतें उतरनी शुरू हो गईं, जो गदी थी वो तेज़ चल रही है, और क्या कुछ है कि मैं सोचती हूँ कि जिस नबी की बरकत बचपन में इतनी थी कि हलीमा सादिया का घर बरकतों से भरा, आज उनकी उम्मत फिर उन नेमतों से बरकतों से क्यों महरूम है। तो लिहाजा उसके साथ उस ताल्लुक़ उनके साथ उस ताल्लुक़ की ज़रूरत है कि जो वाकई अल्लाह की रहमत को दिलवाए। तो यहाँ कह दिया कि तुम अगर किसी और औरत से बच्चे को दूध पिलवाना चाहो तो कोई हर्ज नहीं, फिर याद रखो कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह का डर सबसे बड़ी दौलत है, जिस तरह माल की दौलत होती है ना जेवर दौलत है, इस तरह तकवा भी एक दौलत है, और तकवा की दौलत क्रोन्स और डॉलर्स की दौलत से बड़ी होती है। दुआ करें अल्लाह में तकवा दे दे। इसको अल्लाह के नबी की एक दुआ से भी आप मांग सकते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका, ए अल्लाह मैं तुझसे हिदायत का सवाल करती हूँ। हिदायत मांगते हैं ना, अल्लाह मुझे गाइड कर, मुझे सीधा रास्ता दे, और साथ ही वत्तुका, और अल्लाह मैं तुझसे तेरा तकवा मांगती हूँ, मेरा दिल डरे, मैं तुझसे प्यार करूँ, मैं तेरा खौफ रखूँ। वअलमु अन्नल्लाह बिमा तअमलूना बसीर, और जान लो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसको खूब देख रहा है। यहाँ पे हमारा सबक पूरा होता है। मेरा ख्याल है कि इसके हम जो पॉइंट्स थे वो कर चुके हैं। आपके जहन में ये दूध छुड़ाने और पिलाने पे कोई सवाल नहीं होने चाहिए। बहुत ही अल्लाह ने अच्छे वक्त पे आपसे वो पूरा एक स्ट्रेच में करा दिया, उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर बराह रास्त आप ये आयतें पढ़ते सुनते तो बहुत घबराते। तो अब अगला सबक उसमें इद्दत और कुछ और भी मुतल्लिका बातें, और जिसके ऊपर फिर ये निकाह और तलाक का जो टॉपिक है ये पूरा होगा। कोई सवाल जो इन बातों में जो आज तक हुई है उस पर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। कोई कमेंट? इनका सवाल है कि औरतें जो जॉब करती हैं वो कहती हैं हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देते हैं, यानी थोड़ा भी देते हैं तो बड़ी क्वालिटी का होता है, और जो हर वक्त माएँ बच्चों के सर पर सवार रहती हैं वो क्वान्टिटी टाइम देती हैं, बहुत वक्त देती हैं, और ये बेहतर नहीं है। तो इसका जवाब आप उन औरतों के बच्चों से पूछ लें। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, बड़ी रोने वाली है, रोना चाहते हैं? ये इनका सवाल देखे कि मैं सोचती हूँ, ये मुझे नहीं पता किसकी बात है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि शैतान हमें कैसे सुझाता है बातें। इसका जवाब कोई आलिम नहीं दे सकता, ना मुफ्ती, ना मौलवी, ना कोई दर्स वाला। ये बच्चे क्या हकायक दे रहे हैं, किस तरह नस्लें दूर हैं। एक बच्चा था तो इंतज़ार कर रहा था कि उसकी माँ जॉब से आए। माँ घर आई तो बच्चा बहुत एक्साइटेड था, जैसे ऐसे लगता है ना कि इंतज़ार कर रहा है कि माँ कब आए। मम्मी 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 मम्मी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, मम्मी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो कहेंगे हाँ हाँ पूछो, क्योंकि जब माँ आती है तो वो बस वैसे ही बच्चे को थोड़ा सी बात तो करना ही चाहती है। कहने लगा मम्मी आप एक घंटे में कितने कमाती हैं, हाउ मच डू यू अर्न? ये सवाल सुन के माँ को गुस्सा आ गया। वाई यू आर आस्किंग दिस, तुम क्यों पूछ रहे हो ये बात? मम्मी प्लीज़ बता दें आप कितने कमाती हैं। तो उसने माँ ने कहा कि बच्चे ऐसे सवाल नहीं पूछते। नहीं मम्मी प्लीज़, मम्मी प्लीज़, कहने लगी कि $20 कमाती हूँ एक घंटे के। फिर उसके बाद मम्मी कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन, मम्मी एक और सवाल पूछ लूँ? अब तो मम्मी को गुस्सा आ गया। तो मम्मी ने कहा कि क्या बात है, तुम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो ना, पूछो क्या पूछना है जल्दी से, मैं पहले ही थकी हुई हूँ। कहने लगा मम्मी कैन आई बोरो $5 प्लीज़, मैं आपसे $5 ले सकता हूँ उधार? तो माँ को गुस्सा आ गया, कोई नहीं है मेरे पास पैसे, मैं इसलिए मेहनत नहीं करती, भाग जाओ। और माँ कहती है तो हाँ इसने फिर बेकार चीज़ें को ख़रीदनी होंगी, को कैंडी इसको ये, चलो भाग जाओ मैं बहुत थकी हुई, अपने कमरे में चले जाओ। बच्चा वहाँ से उठ के अपने कमरे में चला गया। माँ थोड़ी देर बाद रिलैक्स होती है, फिर जब फारिग होकर बैठती है ना फिर उसको एहसास होता है कि मैंने बच्चे के साथ ऐसे क्यों बात की, मैं देखूँ तो सही उसका मसला क्या है। खैर ये कहती है कि उसके कमरे में जाती है और उसको बच्चे की सिसकियों की आवाज़ आती है, बच्चा रो रहा है। तो फिर उसके पास जाके उसके बालों में हाथ फेर के उसको बात उठाती है, कहती है कि बेटा क्या बात है ना, तो उसको प्यार आता है। तो फिर कहती है, जब माँ जाके देखती है ना, तो बच्चे के तकिए के नीचे कुछ नोट, पूरा जैसे मसले हुए नहीं होते बच्चों ने हाथ में पकड़े हुए, तो माँ के हाथ में ना नोट आते हैं, पिलो के नीचे नोट दे के फिर माँ को गुस्सा आ जाता है, कहती है ये क्या है, तो कहता है कि ये मैंने अपने पॉकेट मनी में से सेव किया हुआ है ना। फिर माँ को और गुस्सा आ जाता है, कहती है कि तुम्हारे पास नोट थे फिर भी तुम मुझसे $5 मांग रहे थे, तुम बच्चों की तो आदत है ये है वो है। तो फिर वो बच्चा कहता है कि मम्मी यू कैन काउंट दिस, तुम इन पैसों को गिनो। तो माँ गिनती है तो वो $15 होते हैं। कहता है कि मम्मी आई वॉन्ट टू मेक इट 20, मैं इसको 20 करना चाहता हूँ। क्यों? कहती मम कहने लगा कि बच्चा मम्मी आई वॉन्ट टू बाय 1 आवर फ्रॉम यू, मैं तुम्हें $20 देता हूँ, तुम मुझे 1 घंटा दे दो, तुम्हारी ज़िंदगी का 1 घंटा मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, तो तुम मुझे वो दे दो, मैं आपसे ही 5 लेके आपको 20 देता ताकि आप 1 घंटा मेरे साथ बैठे। ये सिर्फ एक बच्चे का जवाब नहीं है, सिसकती हुई सोसाइटी को देखें, आज जितने क्राइम्स हैं ना, यकीन करें ये रिएक्शन है। एक रिपोर्ट मैंने अपनी एक क्लास में पढ़ के सुनाई थी कि जेलर्स जो हैं वो कहते हैं कि जितने जुर्म करने वाले लोग हैं ना, उसमें से अक्सर वो बच्चे हैं कि जो इस तरह अपनी माओं के बगैर पलते हैं। तो मेरा हालांकि इसका जवाब मिल गया। अल्लाह अकबर कबीरा। और कोई बात? हाँ जी, अच्छा सवाल है आपका कि जैसे निकाह के मौके पे बोल के इजाबो कबूल जिसको कहते हैं, तो क्या निकाह में तलाक के वक्त भी अल्फाज की अहमियत है? तो आप जानते होंगे अगर जिनकी भी शादी हुई है कि मुंह के बोलना या लिख के सिग्नेचर करने को एक ही ज़िम्मन में लेते हैं ना, एक सनत होती है, कोई बोल दे या लिख दे दोनों सेम बात है। तो तलाक असल चीज़ इंटेंशन है ना, इरादा है। इसी तरह अगर एक मर्द बोल के तलाक देता है, तलाक के लफ्ज़ बोलता है, तलाक के बारे में कुछ कहता है, तो वो तलाक ही गिनी जाती है। और अगर तलाक की नियत से बीवी तो उस वक्त पास नहीं है, लेकिन वो दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में उसको अगर लिख के भी दे देता है तो भी तलाक हो जाती है। इस पे एक पूरा टॉपिक क्या पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। ये एक बड़ी अच्छी बुक है मिनहाजुल मुस्लिम, इसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में, लाइफ के, और इसमें हर टॉपिक पे काफ़ी डिटेल्स हैं। मैंने आपको इस तरह नहीं दिया, आप चाहें तो इसकी ज़्यादा डिटेल्स हमने RKP का जो ऑनलाइन पे हमारा कोर्स है रब्का पैगाम मेरे नाम, उसमें और भी ज़्यादा हमने इसको डिटेल से किया हुआ है, वहाँ से सुन लिया करें जो लेसन है साथ थोड़ा डिटेल से। तो बहरहाल असल चीज़ नियत है, लफ्ज़ पूरे। फिर आपका एक सवाल ये भी हो सकता है कि लफ्ज़ तलाक ही बोले या ऐसे ही कह दे तुझे छोड़ता हूँ या तू मेरी तरफ से फारिग है, तो उसका भी ये तरीका है कि मर्द कोई ऐसा लफ्ज़ के जिससे उसकी इंटेंशन और प्लस लफ्ज़ हैं वो इशारा मिल जाता है, या उस मर्द को असल में इसका फ़ैसला मर्द करेगा कि मैंने क्या लफ्ज़ किस नियत से बोले थे। ठीक है, चलिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।